نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے چیلنجز اینڈ ٹرائلز آف سنگل ہوڈ، اکیلے زندگی گزارنے کے چیلنجز یعنی مسائل اور اس کی مشکلات. اس کی روشنی میں آج ہم شادی کے بارے میں بات کریں گے اور آج کا یہ ہمارا لیکچر پاکستان پی کے ٹرپ 22-23 کا لیکچر ہے اور اس میں ہمارا اس سال کا تھیم کیا ہے، قرآن کا مطلوب انسان یعنی واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس فرام اس ٹو بی، قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے. ہم جب بھی اسلام یا دین کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پھر نماز، روزہ اور اسی طرح کی گائیڈ لائن آ جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو پہلی بات تو اس میں ذہن میں یہ رکھنے کی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آئے، روزے کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھی آئے. اور اسلام جو ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے. مذہب اور دین میں فرق یہی ہوتا ہے، مذہب ایک خاص سیٹ آف ریچولس، چرچ میں گئے تو یہ کر لینا، مسجد میں جاؤ گے تو یہ کر لینا، سنڈے آئے گا تو یہ کر لینا، سیٹرڈے آئے گا تو یہ کر لینا، رمضان آ گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر باقی زندگی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. جبکہ دان یا دین و دینن مالک یوم الدین میں بھی ہم یہی لفظ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ پورا لائف سٹائل، کوڈ آف لائف. آپ کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم بچپن سے یہ جملہ سنتے آئے. تو اس مکمل ضابطہ حیات میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز روزہ تو سکھا دیں جس کا تعلق آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو انسانی معاملات میں ایک سب سے اہم معاملہ جس کو ہم شادی کہتے ہیں وہ نہ سکھائے. تو آج جس چیز پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی وہ کیا ہے کہ اسلام شادی کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے. آج کا ہمارا سیشن ڈفرینٹ سلاٹس میں ہوگا، لیکن اس میں سے ایک مین سلاٹ کیا ہوگا کہ آج شادیوں میں دیر کیوں ہے، ڈیلیز ان میرجز، اور پھر بہت کچھ جتنا ہمارے پاس آ گیا وہ سب ہم لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں. سب سے پہلے سورۃ نبا کی آیت 8 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ خلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. یعنی اس دنیا میں ہر چیز سپوسز کے ساتھ ہے، پیئرس میں. اب آپ سائنس پڑھیں تو پروٹون کے ساتھ الیکٹران، ٹھیک ہے، پازیٹو کے ساتھ نیگیٹو، رات کے ساتھ دن، خوشی کے ساتھ بہار کے ساتھ، یہ ہے وخلقناکم ازواجا. اس دنیا میں ہر چیز پیئر میں ہے. ایک ہستی ہے جو اکیلی ہے، وہ کون ہے؟ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ کی ہستی ایک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جانداروں میں دیکھیے، میل اینڈ فیمیل، شیر کے ساتھ شیرنی، چوہے کے ساتھ چوہیا، بلی کے ساتھ بلا، گیدڑ کے ساتھ گیدڑنی، اور اسی طرح سے ہر اینیمل جس کو بھی آپ جانتے ہیں سوچیں تو اس کے ساتھ میل اور فیمیل کا تصور ہے. اسی طرح سے آدم اور حوا، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ ایک شوہر اور بیوی کا تھا. آج کے اس ٹاپک کو اپنے بڑے کان لگا کے سننا. ہمارے یہاں لفظ شادی پہ ایک دم شرما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، شادی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں عجیب سے رنگ آنے لگتے ہیں. بیسیکلی شادی از اے فینومینن آف نیچر. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا، وہ دنیا میں اکیلے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، پھر ہم نے ان کی زوج کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ زوجہا، اور دونوں کو کیا کہا، جنت میں رہو اور کھاؤ پیو. جب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، سورہ بقرہ کے شروع کے چوتھے رکوع میں آپ کو یہ سارا قصہ مل جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام فرسٹ ہیومن اس دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زوجہ عطا فرمائی تھی. دنیا میں پہلا رشتہ ماں بیٹے کا نہیں بنا، بھائی بہن کا نہیں بنا، شوہر بیوی کا بنا. اور یہاں ذرا سا مجھے کھل کے بات کرنے دیجئے، ایک بوائے اور گرل فرینڈ کا نہیں بنا، لیونگ ٹوگیدر نہیں تھا، دوست اور سہیلی نہیں تھی، کوئی یارانہ نہیں تھا، آؤٹ آف ویڈ لاک ایک لڑکے لڑکی کی دوستی نہیں تھی. वो किसी भी कॉलेज के लॉन में एक लड़के के सर को एक लड़की की गोद में रखना नहीं था। और आज भी आप कुरान खोलकर मेरी इस बात के बाद देख लीजिए, पूरे कुरान में जहां जन्नत की बात आएगी अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, अज़वाजुम मुतहरतुम, जन्नत में नेक बीवियां होंगी, मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द। वहां भी कोई ऐसा बेहुदा कल्चर नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत रखा ताल्लुक। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जीने के जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उसमें दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। आपने सबने बचपन से ही, बल्कि हम सब अपनी बचपन की हद के जाते और जवानी के आने को देखें तो हम सब अपने इर्द गिर्द दो तरह के लोग देखते थे, एक शादीशुदा जिंदगी और एक गैर शादीशुदा जिंदगी। आप में कितनी बच्चियां मैरिड हैं इस वक्त, वो हैंड रेस करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मैरिड है ना। हम सब इस माशरे में एक घर में जहां आप रहते हैं माँ और बाप मैरिड होते हैं, ज़ाहिर है वो एक मैरिड कपल के तौर पे हमारे सामने इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बच्चे अनमैरिड होते हैं, भाई बहनें, इसी तरह घर में हो सकता है दादी हो, ज़ाहिर है वो भी शादीशुदा होती हैं, फुफ्फो हो सकती हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई, मेरी चार फुफ्फो की शादी हो गई, वो मैरिड है ना। तो जिंदगी के दो दौर होते हैं, एवरीबॉडी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर लाइफ, फर्स्ट इज शादीशुदा जिंदगी से पहले यानी गैर शादीशुदा, और दूसरा क्या है शादीशुदा जिंदगी के बाद का दौर। और कल्चरली भी देख लीजिए, जो हमारा कल्चर है इंडो पाक, उसमें भी शादीशुदा जिंदगी और गैर शादीशुदा जिंदगी जो है उसमें बहुत फर्क है, और मजहबन भी फर्क है। आप पूरा कुरान खोलें, हदीस खोल लीजिए, इस बारे में देखेंगे तो आज जरा सा आपको इसमें दिखाती हूँ कि निकाह के बारे में इस्लाम के क्या अहकाम आता है। जिस अल्लाह ताला ने आपको मुझे दीन सीखने का मौका दिया है तो उसने 100% उंगली पकड़कर आपको मुझे निकाह के बारे में बहुत कुछ बताया। इस पे इंशाल्लाह ताला एंड पे अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको बता के जाऊंगी कि हमारे पास पूरी एक सीरीज है निकाह ए टू जी, वेबसाइट पे भी मौजूद है, ऐप पे भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल पे भी है, और आई एम श्योर के फेसबुक पे भी होगा। आप उसके एक एक स्लॉट को सुनते चाहिए, यू विल नो व्हाट इस्लाम टेल्स अबाउट निकाह, शादी होने से पहले कैसे, क्या शादी हो कैसे सेकंड पार्ट, और शादी के बाद क्या। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, इसमें से आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। लेकिन अगर इस वक्त मैं आपके सामने रखूं तो सूरत नूर की आयत नंबर 32 है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं व अनकहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम में से जो मर्द औरत बेनिकाह हो इनका निकाह कर दो, और अपने नेक बख्त गुलाम लौंडियों का भी। अक्सर लोग कहते नहीं अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तो लड़का अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, अभी तो वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं यकूनु फकरा युग्नीहिमुल्लाहु मिन फदली, अच्छा अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फजल से गनी बना देगा, क्योंकि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। क्या पता चला, हुक्म है। आप कुरान की थोड़ी सी अरबी तो जानती है ना, अकीमुस्सला, व्हाट इज दिस, इंटरोगेटिव, फेले अमर है, हुक्म है। आतुज़्ज़का क्या है, जक़ात दो, हुक्म है ना, ऑर्डर है, डूज है। इंग्लिश में आपके देर आर सम डूज एंड सम डोंट्स इन कुरान। कुरान के डूज में से अगर नमाज पढ़ने का डू है, अकीमुस्सला, ज़कात दो, आतु ज़का, वर्क आओ, रुकू करो, वस्जुदी, सजदा करो, तो उसी के वजन पे है व अन के हुल एयामा। यहां ये नहीं कहा कि अपना निकाह करो, व अन के हु नकाह, एक होता है नकाह निकाह करो, यहां के व अन के हु तुम निकाह करो, किन के, अपने बेनिकाहे लोगों के, यानी असल में इसमें औरत के, बच्ची के, लड़की के वाली वारस जो उनको कहा जा रहा है कि अपनी अनमैरिड बच्चियां जो शादी के अब काबिल हो चुकी हैं उनकी शादियां कर दो। और अय्यम कहते हैं उस शख्स को जिसका कोई स्पाउस ना हो, इसके अंदर बेवा भी आ सकती है औरत कि जिसकी शादी कभी हुई लेकिन शौहर फौत हो गए, और ऑफ कोर्स वो मर्द जिनकी शादी हुई और बेगम चली गई फौत हो गई। इसी तरह इसमें डिवोर्स्ड लोग भी आते हैं, मुतल्लिकात और मुतल्लिकीन, तलाकशुदा मर्द और औरतें। अल्लाह ने सब के लिए कहा वान के हुल अय्याम मिनकुम, तो किसी सोसाइटी में तीन किस्म के लोगों की शादी कर देनी चाहिए। नंबर एक, लड़की लड़का जब वो निकाह के काबिल हो गए, जो कि एक कॉमन बात है हमारे कल्चर में। दूसरा क्या है, वो मर्द औरत जिसका स्पाउस चला गया बेवा हो गई या वो मतलब शौहर चला गया, वट एवर, बीवी चली गई उसकी, और तीसरा वो कि जिनकी डाइवोर्स हो गई। अगर हम अपने इस कल्चर को देखें तो हमारे इस कल्चर में बच्चों की शादी तो एक बहुत बिग इशू है, लेकिन जिनके स्पाउसेस चले जाते हैं, ख़ास तौर पे जवानी में एक औरत है वो बेवा हो गई या कोई मिसहैप हो गया, कोई ऐसा गलत जोड़ मिल गया, शादी अच्छी नहीं निभी, अब वो बेचारी कुछ महीने या साल गुजार कर वापस आ गई, अब उसकी दोबारा शादी नहीं होती। और इससे भी एक तीसरी मजलूम औरत वो है कि जो वापस कर दी जाती है, या हालात ऐसे होते हैं कि वो खुला ले लेती है और उसके सब बच्चे होते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी उन बच्चों के नाम पे दूसरी शादी कर नहीं पाती। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया था कि अली तीन चीज़ों में देर ना करना, एक वक्त जब फ़र्ज नमाज उसका वक्त आ जाए, फ़र्ज नमाज जब आ जाए तो उसको अदा करने में देर नहीं करना, दूसरी चीज़ कि जब कोई फौत हो जाए तो उसको दफन करने में देर ना करो, और तीसरा यह है कि जब किसी का कोई साथी फौत हो जाए या जुदा हो जाए तो उसके दूसरे निकाह में, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। अगर नमाज का वक्त हो गया और हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ना करे मौत आ गई तो उस नमाज का हिसाब देना पड़ेगा। तो अपने लिए एक साइड का पॉइंट नोट कीजिए आज इस सेशन में आने का कि इंशाल्लाह नमाज को वक्त पे पढ़ना है, फ़र्ज़ पढ़ेंगे, स्कूल में फिर भी पढ़ेंगे, कॉलेज में फिर भी पढ़ेंगे, यूनी में फिर भी पढ़ेंगे। मुसलमान के लिए नमाज की नई चीज़ नहीं है। टू प्रे फाइव टाइम्स अ डे इज़ नॉट टू बी रिलीजियस, इज़ टू बी मुस्लिम। आज जो पांच वक्त नमाज पढ़े लोग कहते हैं बड़ा मजहबी है, बड़ा नेक है, बड़ा दीनदार है, बड़ा मजहबी नहीं है, बस वो लीस्ट मिनिमम पे ये बता रहा है कि आई एम स्टिल मुस्लिम्स। ठीक है, तो नियत करते हैं इस बात की आप लोग इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि जो लोग फौत हो जाता है उसका जल्दी से उसको दफन क्यों कर दो, आपने फरमाया कि अगर वो नेक है, इफ़ ही इज़ अ पायस पर्सन सो यू डोंट हैव द राइट, तुम्हें कोई हक नहीं है कि उसको तुम उसकी जगह से रोक लो, और अगर वो खुदा ना खास्ता बुरा है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका अजाब जो वहाँ उसको कब्र में मिलना था वो तुम्हारे घर में आ जाए। और तीसरी चीज़, जो पहले से शादीशुदा था और अब दोबारा अकेला हो गया, इसकी शादी जल्दी क्यों कर दो, क्योंकि ऐसे शख्स के पास शैतान बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इंसान एक दफ़ा एक नेमत को जब पा लेता है ना तो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर हम सब के लिए बहुत कुछ रख दिया, और वो क्या है कि तुमने शादी को जल्दी करना। अब इसी आयत पर रहते हुए मैं चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको आप ज़रूर समझेंगे कि आज हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, क्या आज शादियाँ हमारे लिए बिल्कुल इतनी ही अहम हैं। यानी बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा नोट देने वाली हूँ, आप सब उसके पॉइंट्स को नोट करेंगे, आप खुद लिखेंगे इसके नोट्स, ताकि आपके दिल दिमाग में ये रह जाएं। और वो सवाल क्या है, मैं खुद ही एक सवाल बना देती हूँ, शादी में ताखीर क्यों। कुरान की आयत आपने पढ़ ली, अहादीस मैंने आपको कुछ बता दी, अभी आगे भी हम बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम एक नोट लेंगे, शादी में ताखीर क्यों, एक लम्हा फिक्रिया, वाई देयर आर डिलेज इन गेटिंग मैरिज। इसलिए कि ये बात अगर मैं ना करूँगी तो फिर मैं आपका वो पूरा मकसद नहीं दे सकती आपको आने का। क्या आप वक्त के साथ मुआशरे में जो ट्रेंड्स हैं उनको चेंज होता नहीं देख रहे? अगर आपसे मैं पूछूं, आपकी अपनी उम्रें जो मदर्स की हैं, आपकी एज में मोस्टली शादी 15 से 20 साल के बीच में हो जाती थी, तो हम ज़रा सा अगर पीछे 30 ईयर गो जाएं तो 15 से 20 साल एक एवरेज एज होती थी जिसमें लोग समझते थे। थोड़ा सा और पीछे कर दीजिए, 20 साल पहले लड़की की स्टैंडर्ड एज 20 थी, 20 हुआ माँ बाप के तोते उड़ गए, मोस्टली बच्चियाँ इंगेज्ड हो जाती थी बिफोर 20s, 17-18 साल में मंगनी हो जाती थी, 20 में शादी हो जाती थी। ज़रा सा और आगे आइए तो आप तकरीबन 15 ईयर्स बैक अगर मैं आपको ले जाऊं तो आप देखिए कि बच्ची की उम्र अगर 25 साल की हो जाती थी तो माँ बाप कहते थे अब इसकी पता नहीं होनी भी है कि नहीं होनी, हर तरफ बातें, कुछ हुआ, किधर किया, कोई बात की है, कानों में बातें शुरू हो जाती थी। और अगर 25 साल तक भी हो जाती तो बस ओके, अदरवाइज तो सोचते थे अब होनी नहीं है। इधर 25 से ऊपर हुआ तो घर वाले भी परेशान, दूसरे भी परेशान थे, किसी की इससे पहले हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा और वापस आइए, दिन ब दिन क्या हुआ, 15 साल से 10 साल पे आ जाइए तो एज, बच्ची की शादी की एज बढ़ती जा रही है। اور اب ایک ایسا وقت بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت 25 سال میں تو لوگ سوچ میں پڑتے ہیں کہ اچھا اب شادی بھی ہونی ہے، اور 25 سے 30 سال، بلکہ بعض جگہ تو دیکھا گیا 30 سے 40 کے بیچ کی بچی ہیں، 30, 31, 32, 33 ہے، لیکن ابھی رشتہ نہیں ہے. وائے؟ اکثر ہمارے پاس ایک الحمدللہ پورا پروجیکٹ ہے ناروے میں رشتے جوڑیے کے نام پہ. اور یقین کیجئے کہ اس وقت آپ تو اپنے پاکستان میں اتنے مسلم آبادی میں رہنے والے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ 97% پاکستانی مسلمز ہیں نا ادھر، یہاں اگر آپ کو رشتے نہیں مل رہے تو پھر ناروے میں تو ویسے ہی وہ منارٹیز ہیں، اور پیرس میں تو پھر بھی اتنے تو نہیں ہیں. پوری دنیا میں میں نے گھوم کے جو چیز فیل کی، اور ہمارے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں، رشتے بتائیے، رشتے نہیں ملتے. میں کہتی ہوں کیا لڑکیاں کم ہو گئیں؟ کیا لڑکے کم ہو گئے؟ سب کچھ ہے، لیکن معیار بدل گیا. تو آئیے ذرا ایک لسٹ تیار کرتے ہیں کہ آج رشتے کیوں نہیں ملتے، آج رشتے کیوں نہیں ملتے. اور میں یہاں آپ کو فیل کروانا چاہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک، رشتوں میں دیر کا رجحان ہمارے معاشرے میں کیسی خاموش دراڑیں ڈال رہا ہے، جو بالکل معاشرتی جو ہمارا ڈھانچہ تھا نا، جو اسکیلٹن تھا جو ہمارا اسلامک کلچر کا، یہ پورا زمین میں گرنے والا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ ہم اس کو نہ فیل کریں تو ویسٹ کو دیکھیے. میں اللہ کا شکر ہے جو بچیاں مجھے نہیں جانتی، میں ان کو بتا دوں کہ میں بھی آپ ہی کے اس شہر اسی ملک سے اٹھ کر آدھی دنیا گھوم کے آج واپس آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ نے مجھے امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا بھی دکھا دیا، اور میں نے آلموسٹ 80% یورپ بھی رہ کر، یعنی کہ گھوم کے آئے وہاں رہ کے دیکھ لیا ہے، اور یو اے اور یو کے، تو آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں میں نے ساری دنیا میں جو چیز دیکھی ہے کہ ہم جس طرح قدم بقدم ویسٹرن سٹائل آف لیونگ، ان کے کپڑے، ان کے برانڈز، ان کے کھانے اور ان کے مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہیں، وہاں ہمارا اس وقت قدم بقدم ان کی طرف جانا شادیوں کے سلسلے میں. آج ویسٹرن سوسائٹی اپسٹ ہے، نان مسلم شادیاں نہیں کرتے، نان مسلم شادی کر لیں تو بچے پیدا نہیں کرتے. وجہ کیا؟ وہ ان کی چھوڑیے، ابھی اپنی سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج ہم مسلمان جن چیزوں میں، وہ کہتے ہیں نا جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو اس وقت ورلڈ وائڈ ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ شادیاں نہ ہونا ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ لڑکے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، لڑکیاں عام طور پہ ایجوکیشن میں آگے ہیں. آپ 5 سال پیچھے، یعنی آج 22 کا اینڈ ہے بالکل، آپ لاسٹ 5 ایئرس کے ریزلٹس جا کے بورڈز کے دیکھ لیجئے. یہاں سندھ بورڈ ہوگا، پاکستان میں پنجاب بورڈ ہے، سرگودا بورڈ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر بورڈ میں ایجوکیشن میں لڑکیاں ٹاپرز میں ہیں. شوق بھی زیادہ ہے، پڑھتے بھی ہیں، اور پی ایچ ڈی کا رجحان بھی لڑکیوں میں لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے. تو فرسٹ ریزن لکھیے، پھر انشاءاللہ ان پہ آپ اکٹھا کر لیں گے. پہلی وجہ کیا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پڑھتی ہیں. سیکنڈ ریزن کیا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی ایجوکیشن زیادہ ہو گئی، تو جب اتنا پڑھ لیتی ہیں تو جو اچھا پڑھیں گی ان کو فوراً جابز آفر ہو جاتی ہیں، تو جابز کی جو آپشن ہے وہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کو زیادہ ملتی ہیں. اب اس کے پھر 2 ریزلٹس نکلتے ہیں. پہلا کیا نکلتا ہے کہ لڑکی نے جب اتنے سال پڑھا، ماں باپ کا خرچ بھی ہوا، پھر اس کو اتنی اچھی جاب بھی آفر ہو گئی. کبھی تو ضرورت ہوتی ہے، کبھی شوق بھی ہوتا ہے، اور کبھی ماں باپ کہتے چلو جو خرچ ہوا ہے یہ کما لے گی تو کچھ اپنی شادی کا ارینج کر لے گی. تو پیرنٹس پھر ان بچیوں کے کمانے پہ، ان کی ارننگ پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ایک افیکٹ یہ آتا ہے. اور دوسرا کیا آتا ہے کہ جب بچی پڑھ بھی گئی، پھر جاب بھی کرنے لگ گئی، ظاہر 20, 30, 40, 50 ہزار کمانے لگ گئی، تو پھر اس نوکری کے لحاظ سے اس کے لیول کا رشتہ نہیں ملتا. کیونکہ ایک لڑکی جو 50 ہزار کمانے لگی تو وہ کیسے سمجھے گی کہ اس کا شوہر جب وہ 20 ہزار کماتا ہو؟ فطری سی بات ہے، یہ مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے. تیسری وجہ پھر ایک اور ہے بہت اہم، کچھ پیرنٹس بالکل اپنی بچی کے رشتے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، ہل جل نہیں ہوتی، بچیاں 26, 27 کی بھی ان کو چھوٹی ہی لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ان کی کیا عمر ہے، ذرا پکی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. اور میں نے خود ماؤں سے سنا ہے، نانا میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی اور میں اپنی بچی کو اتنی مشکل میں نہیں، اس جھنجھٹ میں ڈال دی. میں گئی مسیحی تھی، پھر میری ساس نے میرے پہ ظلم کیے، نندوں نے مجھے آگے لگا لیا، میاں نے مجھے دبا کے رکھا. بھائی کیا ہو گیا، اچھی نہیں بات، جیسا بنانا تھا بنا لیا. ہاں ویسے تو ہم ہر چیز نرم پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ مائیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے کہتی ہیں میں اپنی بچی کو ذرا میچور کر کے شادی کروں گی اس کی. فورتھ ریزن لکھیے जब एक लड़की कैरियर बिल्डिंग के बाद जॉब की ज़िंदगी में आई तब उसकी उम्र ऑलमोस्ट 30s में आ चुकी होती है। जब वो 30 की होती है तो रिश्ते मांगे तो लड़के वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लड़का जैसा जिस उम्र का भी हो, मोस्टली लड़के की माँ और बहनें उसके लिए कम उम्र की लड़की चाहती हैं। यहाँ तो आप लड़के की बात करते हैं, अंकल्स भी छोटी उम्र की ही लड़कियों को पसंद कर रहे होते हैं, अगर कभी खुदा ना खास्ता उनको दूसरी शादी करनी पड़ जाए। फिर एक और पांचवी वजह नोट कर सकते हैं, द फिफ्थ रीज़न क्या है कि लड़के वालों के नखरे बहुत हैं, उनको लड़की पसंद नहीं आती, गाय भैंस की तरह लड़कियाँ देखते हैं। वो जैसे सूरत बकरा में गाय का वाक्य है ना, गोरी हो, लंबी हो, ऐसी हो, वैसी हो, बस लोग ट्रॉली कल्चर के नाम पे हर वक्त लड़कियां देखना, उनके घर से चाय समोसे खाना पीना और फ़ायदा करते हैं। और अगर कभी कोई लड़की पसंद भी आ जाए तो फिर फरमाइशें ऐसी और रस्म व रिवाज के इतने लंबे चौड़े सिलसिले हैं कि बस दफ़ा पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आज भी आप देखिए कि कुछ लोगों का ये फन बन चुका है कि लड़की देखने जाएं, और इतना अजीबोगरीब किस्सा है कि वो बच्ची ज़हनी तौर पे पहले ही डिप्राइव हो चुकी होती है कि आप पता नहीं मुझे कौन पसंद करेगा या रिजेक्ट करेगा। कोई आपको सर से पांव तक देखना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा। तो बहरहाल एक ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिश्ते नहीं होते। फिर एक बहुत बड़ी वजह है और वो क्या है कि अमूमन कुछ शहरों में ये चीज़ देखने में आती है कि जो लड़कियों के वालदैन हैं ना, वो लड़के के अंदर हर खूबी देखना चाहते हैं। गुलफाम शहजादा, बड़ी आँखें, सुनहरे बाल, हाथ में राडो की घड़ी और लैंड क्रूज़र, घर भी अपना हो, और उस बेचारा लड़का जिसकी उम्र भी ज़्यादा 24 से 30 के बीच में होगी ना, वो अब्बा जी जो हैं या फिर भाई वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो अक्सर 50 साल की उम्र के अंकल जी को भी नहीं अभी तक मिली होती। हम सब जानते हैं कि 25-30 साल की उम्र में मोस्टली लड़के अपना कैरियर बिल्ड कर रहे होते हैं, और कैरियर बिल्डिंग चाहे आप डॉक्टर क्यों ना बन जाएं, आप में अगर मेडिकल से कोई है तो वो जानता है इतना पैसा खर्च होता है डॉक्टरी पे, और जब शुरू में बनता है इंसान तो एकदम प्रैक्टिस नहीं चलती, पैसा इतना नहीं होता, वो भी बाद में बनता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 23 साल 24 साल 25 साल के लड़के का अपना घर हो, गाड़ी भी हो, उसकी 6 फिगर सैलरी भी हो, और अकलौता भी हो, और माँ भी फौत हो चुकी हो पैदा करते ही, और बहन तो हो ही कोई ना है। एक ब्रदर थे तो उन्होंने अपने किसी दोस्त का तजुर्बा बयान किया, कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था तो वो इंजीनियर था, तो मैं उसका रिश्ता करवाने की कोशिश में था, लड़का लायक फायक खूबसूरत, शक्ल भी अच्छी, जॉब भी अच्छी, लड़की की माँ को लड़का बहुत पसंद आया, लड़के वाले भी राजी थे, लेकिन अचानक लड़की के वालदैन ने इनकार कर दिया। और वजह क्या बताई कि जी लड़के के पास अपना जाती मकान नहीं है, वो किराए के मकान में रहता है। अब मुझे बताइए अगर वो घर भी अपना लेगा तो 10 साल और तो वेट करेगा, या फिर कहीं से रिश्वत लेगा या चोरी करेगा, तो क्या ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की वजह नहीं है। ये 6 पॉइंट बताया। 7 पॉइंट क्या है कि खानदानों के अंदर एक और अजीबोगरीब बीमारी है, और वो कि हर माँ अपनी बेटी का रिश्ता खानदान में बखूबी करने पर राजी है, लेकिन जब बेटे का मामला आता है तो खानदान की सब लड़कियों को कहते हैं नहीं ये भी ठीक नहीं, ये नंद की बेटी ऐसी है, ये लंबी है, ये बहन की अच्छी नहीं, वो नहीं है, और मैं तो बाहर से लाऊंगी अब लड़के के लिए। और जिसकी वजह क्या होती है कि खानदान में रिश्ते मौजूद होते हैं लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगते। हालांकि आपको पता है कि मजे की बात जो किसी ने कही है वो बड़ी अच्छी कही है, अपनों की खामियां पहले पता होती हैं, पराए और बेगानों की खामियां बाद में पता चल जाती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया में किसी में कोई खामी ना हो, और क्या आप में मेरे में नहीं है? आपका बेटे में हर खूबी है, तो क्या आपकी आने वाली बहू में हर खूबी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चंद चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो आज हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हम इन चीज़ों को देखें, इसमें हमारा पूरा सोशल सेटअप बिगड़ रहा है। देखिए अल्लाह ने एक सिलसिला रखा है, बड़ी खुल के बात करूँगी, बच्चा दुनिया में आता है, माँ से अल्लाह ने उसकी खुराक का इंतज़ाम किया, नंबर एक। दूसरी बात है उसको पीना है खाना नहीं है, अल्लाह ने मुंह में जबड़े में दांत नहीं रखे क्योंकि उसने माँ से दूध को सक करना है। आप सोचिए बोर्न बेबी के मुंह में दांत भी हों और वो माँ के लिए कितनी अजियत का जरिया बने। जूं ही बच्चा माँ का दूध पीता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दूध के साथ उसको केला और सिरेले खाने हैं तो पतले पतले से दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब दांत पूरे आ जाते हैं तो कहा छोड़ दो दूध इनका, हौले ही नहीं, काम ही नहीं, 2 साल हो गए, दूध छोड़ दो, अब इसको खिलाओ पिलाओ और दूध पीना इसने तो ये ग्लास में पिएगा। बिल्कुल वही रब जो बच्चे के पैदा होने के बाद माँ के जिस्म से दूध निकालता है, पतला दूध, बिल्कुल कच्ची लस्सी, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जरा बड़ा हो रहा है तो दूध थिक होता जाता है। जब उस रब को रेशो और प्रोपोर्शन का इतना पता है तो जब वो बच्चे के अंदर बलूगत के असरात लाता है। अमूमन पीबीटी की एज 12 ईयर समझी जाती है। कमोबेश हर मुल्क कल्चर उनकी फूड साइकिल उससे फ़र्क हो जाता है। हमारे कल्चर में अमूमन लड़कियां 12 साल की उम्र में और लड़के तकरीबन 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं। अब तो चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इतना हैवी फूड खिला रहे हैं हम अपने बच्चों को और इतना इमोशनल कह लीजिए कि गंध उनकी आंखों से गुजरता है जवानी होने तक कि आज बच्चे 8-8, 10-10 साल की उम्र में बालिग हो रहे हैं। बच्चियों की बलूगत आप सबको पता है एक बड़ी वाज़े निशानी है। लड़कों में कुछ आवाज़ का बदलना, उनके जिस्म पे बालों का आना है, लेकिन अब यहाँ रुकिए, पैदा होते बच्चे को माँ से दूध लेना है तो उसके जिस्म की वो ज़रूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बढ़ती जाएगी, उसका खाना बदलता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह प्यूबर्टी की एज का आ जाना, एक लड़की का बालिग हो जाना और एक लड़के के अंदर फिजिकल चेंजेस का आना इस बात की अलामत है दे आर रेडी टू बी गेट मैरिड। एक लड़की शादी के लिए जिस्मानी तौर पे तैयार है। अगर हमारी तरबियत अच्छी हो, हम उनको डॉल्स बनाकर ना पालें और हर काम हम उनका कर रहे हैं और वो नाज और नखरे दिखा रही हैं, तो 14-15 साल की बच्ची इज वेरी मच रेडी टू बी मैरिड। क्यों? जब भूख लगे और खाना ना दें, आप किसी को प्यास लगी और उसके सामने पानी रख दें और उसके बाद उसको पीने ना दें। आज हमारे मुआशरे का एक कितना बड़ा एक ये प्रॉब्लम है, सारा मीडिया आपको दुनिया में गंदगी दिखाने पर चल रहा है। हर ड्रामे के थीम में लड़के लड़की की मोहब्बत, हर फिल्म में एक हीरो और हीरोइन, और विलन कौन होता है? या लड़की का बाप या लड़की की माँ। और वो लड़की जब रात को भाग रही होती है घर से तो सारे ऑडियंस की हमदर्दियाँ किसके साथ होती हैं? लड़की के साथ, कि अल्लाह करे खैर से इज्जत से भाग जाए, अब्बा जी ना उठ जाए, है ना। और वो फिल्में गाने तो छोड़ दीजिए, आज हमारे हाथों में ये हैं गैजेट, एक एक मैसेज, एक एक चीज़ आपके वन क्लिक पे, हर वो चीज़ है जिससे बेहजाई भी है, गंदगी भी है। बहुत ही पाकीज़ा बच्चा और बच्ची होगा जब अपनी नज़रों को पाक रखे। इस उम्र में तजस्सुस भी होता है और जिस चीज़ से जितना दूर हो बंदा उसके बारे में ख्याल भी ज़्यादा आता है। अब क्या होता है, कैसे बच्ची बच्चियाँ परेशान हैं, एक खामोश नफ्सियाती जंग है। मैं आप माओं को कहूँगी, आप मत अपनी बच्चियों को छोटा समझें। अगर आपकी एज में 12 साल में आप भोले भाले थे, आज की 12 साल की बच्ची भोली नहीं है और आज का स्कूल सिस्टम उनको भोला रहने ही नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में सेक्सुअल एजुकेशन का क्या हालात है। मैं जहाँ से आई हूँ, 3 साल के बच्चे को डे केयर जिसको आप कहते हैं ना, नॉर्वे में उसको बारने हागे कहते हैं, बच्चों का वाह, 3 साल का बच्चा बारने हागे में बॉडी के नाम पर पूरी सेक्स पढ़ता है। और अब ये जो अल्लाह रहम करे इस वक्त सदी LGBT है, छोटे छोटे बच्चों को वो पूरे डे केयर की दीवारों पर लगे पोस्टर्स, उन बच्चों के सामने जो किताबें खुली हैं उनकी तस्वीरों में A to Z जेंडर, बेबी डिलीवरी और होमोस लेस्बियंस होना सिखा रहे हैं। इधर तो भी बात ही नहीं इस मौजू पे हुई, कपड़े बच्चों के जो अब छपते हैं, पहले थे ना आई लव मामा आई लव पापा, आपने भी ऐसे कपड़े देखे होंगे बच्चों के जो पिछले 2-4 साल से बनने लगे। अब बच्चों के कपड़ों पे आई हैव 2 पापाज, आई हैव 2 मॉम्स, आई हैव पापाज, और इतने खामोश मैसेज। ये तो एक गंदगी का चैप्टर खुल जाएगा जिसमें अभी आपको मैं नहीं डालना चाहती, लेकिन बात यह है कि मगरिब तो अपने आप को बर्बाद कर चुका, उनकी आबादी अब रिवर्स गियर में आ गई है, लेकिन हम जानते बूझते खुद उस घड़े में गिर रहे हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। और हम सब इस इज्तमाही खराबी और जवाल के जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं ना कि सद अफसोस कश्ती डूब रही है और कश्ती के मल्लाह और मुसाफिर बेनियाज हैं। कहते हैं हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को, और वो मैं इसको अल्लामा इकबाल के नाम करती हूँ कि कौम के दिल से एहसास जियां जाता रहा। आप वो मुल्क जिनकी तरफ आपकी राल टपकती है, वहाँ लोग अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वहाँ लोग शादी नहीं कर रहे। नॉर्वे में एक बच्चे के पैदा होने पे गवर्नमेंट पिछले 2 साल पहले तक 50,000 क्रोन देती थी कि जाओ इसके कपड़े खरीदो, इसके जूते खरीदो, पैम्पर खरीदो। माँ को 1 साल की छुट्टी, बाप को 3 माह की छुट्टी फ्री विद पे देती थी। इस साल मुझे अभी आने से पहले किसी से पता चला, उन्होंने इसको 96,000 कर दिया। और 96,000 करोन आप लोगों के आज के रेट के हिसाब से करूं तो अबाउट 20-21 लाख रुपए हैं। इसके बावजूद नॉर्वेजियन दे डोंट वांट गेट बेबीज, उनके लोकल्स बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते, वो कहते हम फंस जाएंगे, हम बन जाएंगे, अव्वल तो शादी नहीं करते, किसने फंसना है? अगर शादी हो भी जाए तो बच्चे पहले ही हो चुके होते हैं कभी, और उनके सारे बेनिफिट्स हम मुसलमानों को मिल रहे हैं। वो इसलिए भी अब ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि 96,000 करोड़ मिलेगा। उनके जितने फैमिली बेनिफिट्स हैं इस वक्त सोमालीज ले रहे हैं, अफ्रीकीज ले रहे हैं, और अब देखा देखिए हमारे पाकिस्तानीज भी ले रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहते वो बच्चे पैदा? एक माइंड सेट दे दिया कि बच्चे तुम्हारे रास्ते की रुकावट। लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। आज बहुत बड़ी एक वजह हमारी बच्चियों के जहनों में डाली जा रही है, ये तो इंशाल्लाह आप आगे जाकर देखेंगे कि आज शादी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह हमारी यूथ का परसेप्शन चेंज कर दिया गया, उनका माइंड सेट चेंज कर दिया गया। ये जो आपको शुरू में सिंगलहुड दिखाया था ना, आज इस चीज को वीडियोस के जरिए, कार्टून्स के जरिए, थीसिस के जरिए, सेमिनार्स के जरिए पूरी दुनिया के वर्ल्ड चैनल प्रमोट कर रहे हैं। ड्रामे बिल्कुल नजर आने वाला जहर जो हमें मीडिया से दिया जा रहा है, शादी नहीं करनी, शादी पांव की रुकावट। आप देखिए कि आज हम अपने बच्चों की बालिग होने पर शादी नहीं करते, और हमारे इस्लाम ने कंडीशनली और सम सर्कमस्टेंसेस में एक मर्द को 2 या 3 या 4 शादियों तक की इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी है। हम पहले दूसरी तीसरी चौथी शादी को तो बुरा समझते ही थे, आज इसको भी बहुत बैकवर्ड होना समझ लिया गया है कि एक लड़की और लड़के की फौरन शादी कर दी जाए। लोग सोचते हैं कि ये तो थर्ड क्लास लोग होते हैं, फटाफट शादियां करते हैं और देखो फिर उनके फौरन बच्चे भी होने लग जाते हैं। लोग मौजूद है कहते हैं शादी नहीं करनी, किए बच्चे नहीं करने, भाई कुछ बेबी अभी हमने नहीं चाहा, अभी हमने प्लान नहीं किया। अच्छा क्या मसला है? अभी हमने पढ़ना है, दोनों पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं अब हमने कैरियर बनाना है, नहीं अभी हमने घर खरीदना है, नहीं अभी ये करना है, 10 साल हो जाते हैं बच्चा नहीं होता, फिर अल्लाह कहता है जॉब मैंने ही नहीं तुम्हें देना। यानी फितरत के निज़ाम को आज हमने ऐसा बदल लिया। आप देखिए कि एक बेचारी बेवा या मुतल्लिका, उसकी शादी तो दूर की बात, आज हमारे कल्चर में अनमैरिड लोगों की शादी मुश्किल कर दी गई। जिस अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, उसने अगर हमें जीने का तरीका सिखाया और उसने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, तो वो गलत कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया कि शादियां बहुत जल्दी कर दी जाएं, लेकिन अमूमन आज हमारे कल्चर में शादी का मौजू एक बहुत ही मुश्किल मौजू बना दिया गया, और शादी करना बाज़ लोगों की जिंदगी का कह लीजिए कि गोल बन गया, और कुछ लोग उससे रुकने लगे। नतीजा क्या निकला कि हम जब बच्चों की शादी को डिले कर रहे हैं, इसके बरक्स उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उनके माहौल में, बाहर की पूरी दुनिया में पोल्यूशन है। चारों तरफ मैसेजेस तो खामोश कुछ और ही हैं, लेकिन जब किसी को भूख लगे और उसको खाना ना दे, प्यास लगे और पानी ना दें, तो जाहिर है कि वो फिर दूसरे पे देखेगा। आज जो जिना है, बदकारी है, बेहयाई है, अगर आप उस सबको देखें तो हमने जिना की तरफ जाने वाले रस्तों को बंद नहीं किया, खोल दिया, और दूसरी तरफ शादी मुश्किल कर दी। नतीजा क्या हुआ कि आज हमारे बच्चों की शादियां हो नहीं रही, हो भी जाएं तो फिर होता क्या है? आप देखिए कि फितरी सी बात है, जिंदगी का जो तकाजा है उसको पूरा कर ले तो आप बहुत फुलफिलमेंट फील करेंगे। जब बच्चियों के रिश्ते आए और हम उसको नोटिस ना लें, तो फिर रिश्तों की बजाय उनकी दोस्तियों के पैगाम आएंगे। फिर वो बेटियां फूलों से सजी हुई उरूसी गाड़ियों में बैठने और शादी बड़ी इज्जत और मोहब्बत से करके ससुराल में जाने की बजाय वो ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों में डेटिंग पर जाया करेंगी। बेटे बेटियों की शादियों की बजाय उनके अफेयर्स और उनकी बीवियों के कुछ ऐसे किस्से मिलेंगे जो इस वक्त ढके छुपे नहीं हैं। फिर इस वक्त ऐसा वक्त आ जाएगा कि मियाँ साहब गए तो ऑफिस में और बेगम को शक पड़ रहा है कि वहाँ रात तक क्या हो रहा है, वो डिलेज गए, ये मीटिंग में गए, ये किस शहर में गए, ये क्यों गए हैं। फिर न्यू ईयर नाइट, फिर वैलेंटाइन डे, फिर हेलोविन, फिर चांद रात, और ऐसे त्यौहार जिसमें लड़कियां लड़के एक दूसरे के जज्बात को भड़काते हुए दिखते हैं, यही होगा। आज घर घर में ये आग लगी हुई है, यकीन कीजिए। फितरत के असूल से जब मुंह फेरा तो नतीजा क्या निकला कि आज अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में भी ये वक्त आ जाए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम के प्रोफाइल के अंदर बाप का खन्ने में नाम लिखना लाजमी नहीं है। کیونکہ کبھی پتہ ہی نہیں, باپ کا خانہ نہیں ہے, اب باپ کی جگہ ماں کے نام بھی لکھا جا رہا ہے. یعنی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت زیادہ ہمارے لیے خطرے کا الارم ہے. تو ابھی تک کی جتنی بات ہے اس کا خلاصہ کر کے اس چیز کو رکھ لیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کے موضوع کو کیوں ایسا رکھا. اسلام میں شادی بہت آسان تھی, ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے. اور پھر جو وجوہات ہیں, اگر آپ اس آیت کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیت 21 میں فرماتے ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے. اگر دنیا کی ساری فلموں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں پکچرائز کی جانے والی فلموں میں جتنے خوبصورت ڈائیلاگس بولے جاتے ہیں نا لو کے نام پہ, اس کے مقابلے پہ صرف اسے ایک آیت کو رکھ دیں تو دیٹ از موسٹ رومانٹک آیت. شادی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ اس کے ساتھ ایک ٹاپک لکھ دیجئے, واٹ از دا پرپز آف میرج؟ لوگوں کے بچے پیدا کرنا نہیں, پھر جن کے بچے نہیں ہوئے پھر ان کا مقصد نہیں رہا, اور جن کے شادی سے پہلے ہی ہو گئے پھر وہ کیا ہوا؟ شادی کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ان آیتوں پہ ہم نے کئی سیمینارز, تفاسیر اور ایون جنرل لیکچرز بھی کیے ہوئے ہیں, میرا گھر میری جنت. لیکن یہاں میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ سورۃ روم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا پیغام دیا آپ کو مجھے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے, اٹ از سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ تمہارے لیے تمہارے ہی سیم سپیشی, جنڈر نہیں, سیم سپیشی میں شادی کرا دی. عورت کی شادی مرد سے, یہ نہیں کہ عورت کی شادی جن سے اور مرد کی شادی پری سے. وہ تو مائیں کہتی ہیں نا, بہنیں کہتے ہیں وہ پری کہاں سے لاؤں جسے تیری دلہن بناؤں, تو پری آ گئی تو وہ جان بھی لے جائے گی آپ کی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کی شادیاں انسانوں سے کروائیں. آپ دیکھیے ایک مرد ہے اور اس کی شادی بلی سے کرا دیں, عورت کے پہلو میں گھوڑا بیٹھا ہو کیسا لگے؟ ہمیں انسانوں کو دیکھ کر قربت کا احساس ہوتا ہے نا, آج لوگوں نے اس چیز کو بھی توڑ دیا. آپ کو پتا کہ جب آپ ایک دفعہ بریک سے پاؤں اٹھاتے ہیں نا, پھر آپ ایک جگہ نہیں ہلتے, آپ بہت گرتے ہیں. سب سے پہلے اسلام کا اصول کیا تھا کہ دیر از نو ریلیشن آؤٹ آف ویڈ لاک. اسلام شادی کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ عورت اور مرد کے بیچ میں محبت, پیار, اس کے اظہار, اس کے تعلق کا اونلی ایک طریقہ ہے اور وہ نکاح ہے. نکاح سے جو محبت پیدا ہوتی ہے نا, اس انیکسپلینیبل. کوئی ہیر رانجھا کی محبت, وہ سسی پنوں کی محبت, وہ رومیو جولیٹ کی محبت کیا ہوگی جو ایک نیولی ویڈ کپل کی آپس میں ہوتی ہے. اللہ دلوں میں ایسا پیار ڈال دیتا ہے, اسے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں. کیجئے محبت, لو کیجئے, کوئی بدنامی کا ڈر نہیں, پکڑے جانے کا ڈر نہیں, اماں دیکھ لیں گی کوئی بات نہیں, ابا کا دوست نہ دیکھ لے کیا ہوگا. آپ بچوں کی شادیاں کیجئے, کیا مصیبت ہے؟ ہمارے ہاں ساری فلم میں جگلنگ ہو رہی ہے, لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ کبھی درخت سے لٹک کے گانے گا رہے ہیں, کبھی چھپ کے باغوں میں مل رہے ہیں, پھر اینڈ پہ یا شادی ہو جاتی ہے تو فلم ختم ہو جاتی ہے. یعنی دیر از نو رومانس آفٹر میرج, جیسے دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ. شادی نہ ہو, دونوں مر جائیں تو دونوں کی روحیں اوپر جا کے ایک دل بنتا ہے, چلو یہاں نہیں ملے تو وہاں تو جا کے ملیں گے. کیسی باتیں کرتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری مچ رومانٹک وتھ ہز وائفس, پروفٹ ایٹ ہوم. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے تھے, باقی بیویوں سے محبت تھی. ایک کپ کے اندر اگر انہوں نے پانی پی کے ان کو دیا تو وہ گھما کے کپ وہاں سے پیتے جہاں سے عائشہ نے پیا ہوتا. عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی چوس کے دیتی تو اللہ کے نبی اپنے ہونٹ اسی جگہ پہ رکھ کر اس کو چوستے. کبھی اس کو عائش کہتے, کبھی اس کو ہرا کہتے, کبھی ان کو کہتے صدیق کی بیٹی صدیقہ. آج ہمارے ہاں کوئی ہسبینڈ وائف ایسا رومانس کر سکتے ہیں؟ پہرے لگے ہوتے ہیں, کہیں نند کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو کہیں اماں جی نے کسی اور کو چھوڑا ہوا. آج ہمارے کلچر میں یہ ہو گیا, میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے. ایک پلیٹ میں دونوں کھائیں تو بچے کھیکی کھیکی کھا سرے ہوتے ہیں. وہ دیکھو انکل آنٹی ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں, وہ دیکھے انکل نے آنٹی کو جانو بول دیا, وہ دیکھے انہوں نے کیا بول دیا, تو کیا ہوا, واٹس رانگ؟ यानी आज हम इस रिश्ते की, इस रिलेशन की खूबसूरती को देख नहीं पा रहे। तो लिहाजा आप, अगर आप में से जो मैरिड सिस्टर्स हैं उनके लिए तो फ़र्ज़ का भी दर्जा शुरू हो गया, लेकिन जो बच्चियाँ बैठी हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि नंबर एक, जहाँ आपकी शादी हो, आगे जाकर मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन भी एंड पे सवालों में भी दे सकती हूँ, पहले तो बेस्ट पर्सन को चूज़ करना है। और लड़के को चूज़ करने का काम कैसे क्या होगा, इसको एक अलग टॉपिक में करते हैं, लेकिन इस वक्त इस आयत को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ ना, तो मवद्दा व रहमा, ये दो लफ्ज़ हैं, वन मवद्दा वुद से और रहमा रहम से। ये क्या है, शादी के शुरू के दिनों में बहुत इंटीमेसी होती है, रोमांस, हर चीज़ ही अच्छी लगती है, लड़की भी सजती संवरती, कमरा भी सजता, बेड सेट्स भी चेंज होते, फूल भी हैं, गजरे भी मिल जाते, शुरू में लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते, हुसन भी है। अब क्या हुआ, शादी के बाद एक बच्चा हुआ, दो बच्चे हो गए, अब औरत बिजी हो गई, कमर कमरा बन गया और वो हुसन ख़त्म हुआ, तो अब छोड़ दो। लोग तो यही कहते हैं ना, भंवरों की तरह इधर उधर उड़े, फूलों का रस चूसा और फिर चले गए। आज वेस्ट की लड़की देखिए, एक औरत के पास चार चार रंग के बच्चे होते हैं, एक काला, एक गोरा, एक चपटा, एक फुला, बाप कोई नहीं है उनका, किसी का भी नहीं साथ। एक सिस्टर किसी को किसी ट्रेन में मिली तो उनके साथ तीन चार बच्चे थे, और हर बच्चा डिफरेंट कल्चर का दिख रहा है। ये समझिए कि ये कोई डे केयर चलाती हैं और वहाँ के बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लाई हैं। बाद में पता चला वो सारे उसके अपने बच्चे थे। तो कहने लगी कि तुम्हारा शौहर जो है वो किस कौम का है, कहेंगे नो आई डिडंट गेट मैरिड येट, मैंने अभी शादी नहीं की। कहा क्यों, कहती अभी मुझे कोई ऐसा मर्द ही नहीं मिला कि जो इस काबिल हो के मुझसे शादी करे। तो चार पांच रंग के बच्चे उसके पास थे। ये सिर्फ मवद्दा की बातें, मोहब्बत की, चंद दिन के बाद ख़त्म। इस्लाम क्या कहता है, रहमा, बुढ़ापा, जब बच्चों के बाद औरत में कशिश कम हो गई, औरत बिजी हो गई, शादी के बाद कोई एक बीमार हो गया, कोई हैंडीकैप हो गया, इस्लाम मियां बीवी के बीच में जो सबसे ब्यूटीफुल बॉन्ड चाहता है या दिखाता है वो क्या है कि एक दूसरे को सुकून दो। तो द पर्पस ऑफ टू गेट मैरिड क्या है, सुकून, इत्मीनान, खुशी, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, बीवी, वो उसको जिस्मानी तौर पे खुश करेगी, वो उसके खाने का ख्याल करके उसको, उसके पेट को खुश रखेगी, घर को साफ रखेगी, उसकी एथेटिक सेंस अच्छी होगी, मर्द कमा के लाएगा, औरत को झंझट नहीं है कोई कमाने का, वो उसका कवाम है। इस्लाम ने तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ दी, लेकिन लोग लेते नहीं हैं।